एकत्र
एकत्र
ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करने वाले हैं जो दशकों पहले लिखी गई थी, लेकिन जिसकी गूंज आज भी शायद पहले से ज्यादा सुनाई देती है।
हाँ बिल्कुल, रॉबर्ट एन बेला और उनके सहयोगियों की किताब हैबिट्स ऑफ द हार्ट, मतलब हृदय की आदतें।
जी, इंडिविजुअलिज्म एंड कमिटमेंट इन अमेरिकन लाइफ,
अमेरिकी व्यक्तिवाद और प्रतिबद्धता।
और ये हृदय की आदतें मतलब कोई दिल की बीमारी नहीं है?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये वो गहरी आदतें, रस्म और रिवाज, सोचने का तरीका जो किसी समाज का कह सकते चरित्र बनाते हैं।
सही कहा, और किताब का मूल सवाल यही है कि भाई एक समाज जो व्यक्तिगत आजादी को इतना ऊपर रखता है,
हाँ,
वो अपनी सामाजिक एकजुटता, अपनी जिम्मेदारियों, वो आपसी जुड़ाव, उसको कैसे बनाए रख सकता है। और ये सवाल तो आज मतलब कितना जरूरी हो गया। हम सब अपनी पहचान, अपनी इच्छाएं, अपने लक्ष्य, इनको लेकर कितने सजग हैं।
बिल्कुल,
लेकिन क्या इस चक्कर में हम कहीं समुदाय को, परिवार को, समाज को पीछे छोड़ते जा रहे हैं?
यही तनाव है जिसकी जड़ में ये किताब जाती है। व्यक्ति के अपनी दुनिया और उसकी सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच का वो संतुलन।
तो चलिए पहले इनके लेखक के बारे में थोड़ा जानते हैं, रॉबर्ट एन बेला।
हाँ, रॉबर्ट बेला अमेरिका के बड़े माने हुए समाजशास्त्री थे, खासकर धर्म और समाज के रिश्ते पर उनका काम बहुत अहम माना जाता है।
उनका वो 1967 वाला लेख भी तो था, सिविल रिलीजन इन अमेरिका, बड़ा चर्चित हुआ था।
हाँ हाँ, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका में धर्म से अलग भी एक तरह की साझी नागरिक आस्था है।
लेकिन ये किताब सिर्फ उनकी अकेली की नहीं थी, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक टीम थी पूरी। रिचर्ड मैटसन, विलियम सुलिवन, एन स्विडलर, स्टीवन टिप्टन, ये सब विद्वान इसमें शामिल थे।
अलग अलग फील्ड से, समाजशास्त्र, दर्शन, नैतिकता।
जी, और उनकी खासियत ये थी कि उन्होंने सिर्फ मतलब थ्योरी की बात नहीं की, उन्होंने असल में आम अमरीकी लोगों से बात की, लंबी गहरी बातचीत,
उनकी कहानियां सुनी।
हाँ, उनकी कहानियां सुनी और फिर उन कहानियों को इतिहास और दर्शन के बड़े सवालों से जोड़ा।
ये समझना कि आम लोग सफलता, प्यार, न्याय, जिम्मेदारी, इन सबके क्या मायने निकालते हैं अपनी जिंदगी में, और ये सोच आती कहां से है।
बिल्कुल, यही इस किताब को खास बनाता है। ये सिर्फ कोई सूखा एकेडमिक विश्लेषण नहीं है।
हाँ, लोगों की धड़कन सुनने जैसी कोशिश है।
तो किताब का जो मूल तर्क है वो क्या है? लेखक कहते हैं कि अमरीकी समाज में, खासकर मिडिल क्लास में, एक तरह का कह लीजिए कट्टर व्यक्तिवाद बहुत हावी हो गया है।
कट्टर व्यक्तिवाद, इसके दो चेहरे बताए हैं उन्होंने, है ना?
हाँ, दो चेहरे। पहला है उपयोगितावादी व्यक्तिवाद।
उपयोगितावादी मतलब
हर चीज को नफे नुकसान से देखना, अपने स्वार्थ, अपने फायदे के तराजू पर तौलना, मेरे लिए इसमें क्या है, ये वाली सोच।
अच्छा, और दूसरा?
दूसरा है अभिव्यक्तिवाद। इसका सारा जोर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने पर है, अपनी असली पहचान खोजने पर, खुद को यूनिक साबित करने पर।
मैं जैसा महसूस करती हूँ वही सही है,
कुछ ऐसा।
हाँ
बिल्कुल, मेरी फीलिंग सबसे जरूरी है। लेखक कहते हैं कि ये दोनों तरह का व्यक्तिवाद लोगों की पहली भाषा बन गया है।
पहली भाषा मतलब सोचने और बात करने का मुख्य तरीका,
एकदम डिफॉल्ट मोड कह सकते हैं।
और इस पहली भाषा के शोर में कुछ और आवाजें दब गई हैं।
हाँ, अहम आवाजें, वो आवाजें जो हमें परिवार की, समुदाय की, नागरिक कर्तव्य की, सबकी भलाई की याद दिलाती हैं।
अच्छा,
इन चीजों के लिए जिस नैतिक भाषा की जरूरत है, जैसे कर्तव्य, सम्मान, त्याग, वादा,
हाँ,
वो कमजोर पड़ गई है। लोग शायद अच्छे काम करते भी हों, पर क्यों करते हैं ये बताने के लिए उनके पास सिर्फ व्यक्तिगत तर्क होते हैं। मुझे अच्छा लगा, ये मेरे लिए सही था, बस।
कोई साझा आधार नहीं बचता।
सही, तो किताब का बड़ा सवाल यही है भाई, आजादी पर बने समाज में हम वो सामाजिक बंधन, वो नैतिक जिम्मेदारियां कैसे बचाएं जो एक स्वस्थ लोकतंत्र और एक सार्थक जीवन के लिए जरूरी हैं।
लेकिन वो व्यक्तिवाद को खत्म करने को तो नहीं कह रहे?
नहीं नहीं, खत्म करने की बात नहीं है, उसे संतुलित करने की बात है। वो याद दिलाते हैं कि अमेरिका की जड़ों में दो और परंपराएं रही हैं, बाइबल की आस्था और नागरिक गणराज्य की सोच।
हाँ, जो व्यक्ति को समुदाय से जोड़ती थी।
बिल्कुल, लेखक कहते हैं कि ये हमारी दूसरी भाषाएं हैं जिन्हें हमें फिर से सीखना होगा।
अच्छा, किताब की बनावट भी है थोड़ी अलग, पहले निजी जिंदगी, फिर इतिहास और फिर बदलाव का रास्ता।
हाँ, तीन हिस्से हैं मोटे तौर पर। पहले हिस्से में वो इंटरव्यू के जरिए दिखाते हैं कि ये व्यक्तिवाद असल जिंदगी में कैसा दिखता है।
जैसे वो मैनेजर वाली कहानी है जो करियर और समुदाय में फंसा है।
हाँ, ब्रायन पामा, या वो सामाजिक कार्यकर्ता जो गोरमैन, जिसे लगता है कि अब लोग सुनते ही नहीं।
इन कहानियों से वो तनाव साफ दिखता है ना? एक तरफ आजादी चाहिए, अपनी पहचान चाहिए,
और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं गहरे जुड़ाव की किसी बड़े मकसद का हिस्सा बनने की इच्छा भी है।
यहीं पर वो शीलावाद वाली बात आती है। बहुत मशहूर हुआ ये कॉन्सेप्ट।
हाँ, शीलावाद। शीला लार्सन नाम की एक नर्स के इंटरव्यू से निकला ये।
क्या कहा था उसने?
जब उससे उसकी आस्था के बारे में पूछा गया तो उसने कहा, हाँ, मैं ईश्वर में विश्वास करती हूँ, ये बस मेरी अपनी छोटी सी आवाज है, ये शीलावाद है।
शीलावाद मतलब अपनी खुद की बनाई हुई आस्था।
बिल्कुल, जिसका किसी परंपरा, समुदाय या धर्म ग्रंथ से कोई लेना देना नहीं, बस मेरी अपनी आवाज।
ये तो चरम व्यक्तिवाद हो गया, धर्म के मामले में भी।
हाँ, ये दिखाता है कि कैसे धर्म भी एकदम व्यक्तिगत पसंद और भावनाओं का मामला बन गया है। मैं खुद तय करूंगा कि मेरे लिए क्या सच है।
और ये सोच फिर रिश्तों पर भी असर डालती होगी, प्यार, शादी।
जाहिर है, लेखक कहते हैं कि रिश्ते भी अब या तो एक तरह के सौदे बन रहे हैं,
कॉन्ट्रैक्ट,
हिसाब किताब कि किसको क्या मिल रहा है,
या फिर
वो सिर्फ भावनात्मक संतुष्टि का जरिया है, पर्सनल ग्रोथ का साधन। जैसे ही संतुष्टि कम हुई या ग्रोथ रुकी,
रिश्ता खत्म।
हाँ, वो जो शादी का पुराना विचार था ना, एक वाचा का, एक स्थायी वादे का, जो सिर्फ खुशी पर नहीं बल्कि निष्ठा, त्याग, मुश्किल वक्त में साथ निभाने पर टिकाऊ,
वो कमजोर पड़ रहा है।
बिल्कुल, रिश्तों को भी मेरे लिए क्या है या मुझे कैसा महसूस हो रहा है कि चश्मे से देखा जा रहा है।
और यही हाल नागरिक जीवन का भी। लोग समुदाय को जरूरी तो मानते हैं, पर
किसी सामाजिक काम में या स्थानीय मुद्दे पर लगातार भागीदारी करने से कतराते हैं। क्यों?
क्योंकि जब तक सीधा अपना फायदा ना दिखे,
हाँ, तब तक सामुदायिक भलाई के लिए अपना टाइम, अपना पैसा लगाना मुश्किल लगता है। लोग अक्सर अपनी ही तरह के लोगों के छोटे छोटे दायरे बना लेते हैं,
लाइफस्टाइल एन्क्लेव, जहाँ अलग विचारों से टकराव ही ना हो।
सही, तो ये तो हुई निजी जिंदगी की बात, लेकिन सवाल है कि ये व्यक्तिवाद इतना हावी हुआ कैसे?
हाँ, इसकी जड़ें कहाँ है? किताब का दूसरा भाग इसी पर है।
जी, ये थोड़ा ऐतिहासिक है, लेकिन जरूरी है समझना कि हमारी आज की सोच कैसे बनी।
इसमें वो चार नैतिक परंपराओं की बात करते हैं।
हाँ,
जिनसे अमरीकी समाज ने सोचना सीखा।
पहली दो बाइबल वाली धार्मिक परंपरा और नागरिक गणराज्य वाली परंपरा। ये हमेशा व्यक्ति को एक बड़े समुदाय से, इतिहास से, साझा भाग्य से जुड़कर देखती थी।
नागरिक होना सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी थी।
बिल्कुल, लेकिन फिर धीरे धीरे दो और परंपराएं उभरी और हावी हो गईं। एक उपयोगितावादी, जिसका लेना देना व्यापार, पूंजीवाद, व्यक्तिगत सफलता से था,
बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे लोग।
हाँ, और दूसरी थी अभिव्यक्त परंपरा, जिसकी जड़ें साहित्य में, फिर मनोविज्ञान में थी, आत्मखोज, भावनाएं, ये सब केंद्र में आ गया।
और हुआ ये कि इन बाद वाली दो व्यक्तिवादी परंपराओं ने
पहली दो समुदाय केंद्रित परंपराओं को धीरे धीरे किनारे लगा दिया। नतीजा, व्यक्तिवाद हमारी मुख्य भाषा बन गया।
और इसका असर हमारी संस्थाओं पर भी पड़ा।
कैसे?
जैसे नागरिकता को लें, राजनीति अब आम नागरिकों के बीच बहस का मंच कम
और अलग अलग गुटों की लड़ाई ज्यादा बन गई है, जिसे एक्सपर्ट मैनेज करते हैं।
हाँ, और नागरिक बस दर्शक या ग्राहक जैसा हो गया है।
काम का भी जिक्र है, काम अब आह्वान या अभ्यास नहीं रहा।
हाँ, पहले काम को एक कॉलिंग या प्रैक्टिस की तरह देखा जाता था, एक हुनर, एक सेवा जिसका समाज में महत्व हो। अब वो ज्यादातर एक जॉब या करियर है,
जिसका मुख्य मकसद पैसा और अपनी लाइफस्टाइल।
बिल्कुल,
काम का सामाजिक या नैतिक पहलू पीछे छूट गया।
और धर्म में वही शीलावाद।
हाँ, वही प्रवृत्ति। कई धार्मिक संस्थाएं भी लोगों को जोड़े रखने के लिए व्यक्तिगत खुशी और भावनात्मक संतुष्टि पर ज्यादा जोर देने लगी हैं। पारंपरिक नैतिक शिक्षा, सामुदायिक जिम्मेदारियां, ये सब थोड़ा पीछे चला गया।
तो भाई, तस्वीर तो थोड़ी चिंताजनक लगती है, तो फिर किया क्या जाए? किताब का तीसरा हिस्सा इसी पर है।
हाँ, आखिरी हिस्सा। और यहाँ लेखक कोई आसान समाधान या सरकारी नीतियां नहीं बताते।
अच्छा, तो फिर
वो एक गहरे नैतिक और सांस्कृतिक बदलाव की बात करते हैं। कहते हैं कि हमें व्यक्तिवाद को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसे फिर से मजबूत सामाजिक रिश्तों और संदर्भों में वापस लाना है।
अच्छा, उसे जड़ों से जोड़ना है वापस।
बिल्कुल, इसके लिए वो दो चीजों पर जोर देते हैं। पहला है अभ्यासों का पुनरुद्धार।
अभ्यास जैसे?
अभ्यास यानी कोई भी ऐसी साझा गतिविधि जिसके अपने उत्कृष्टता के मानक हों, जिसे सिर्फ बाहरी फायदे के लिए नहीं बल्कि उसे अच्छी तरह करने के लिए ही किया जाए। जैसे अच्छी तरह बच्चे पालना, कोई हुनर सीखना, ईमानदारी से अपना पेशा निभाना।
अच्छा, इनसे हम सहयोग और जिम्मेदारी सीखते हैं।
सही। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है स्मृति के समुदायों को मजबूत करना।
स्मृति के समुदाय, ये क्या है?
को भूलते नहीं, अपनी कहानी बार बार कहते हैं और उसी साझा कहानी से अपनी पहचान बनाते हैं, अपने भविष्य का रास्ता तय करते हैं।
मतलब ये हमें याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हम एक बड़ी कहानी का हिस्सा हैं।
एकदम। लेखक एक नए सामाजिक ताने बाने की जरूरत बताते हैं, सोशल इकोलॉजी, जहां व्यक्ति और बड़ी ताकतों जैसे सरकार या बाजार के बीच की जो संस्थाएं हैं,
परिवार, पड़ोस, क्लब, धार्मिक समूह,
हाँ, स्वयंसेवी संगठन, ये सब फल फूल सकें, क्योंकि यही वो जगह है जहां हम असल में एक दूसरे के साथ जीना, नागरिक बनना सीखते हैं।
तो इस पूरी काफी गहरी चर्चा से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं, क्या सबक है?
हाँ, कुछ मुख्य संदेश तो हैं। पहला और सबसे बड़ा शायद यही कि बेलगाम व्यक्तिवाद खतरनाक हो सकता है,
चाहे वो सिर्फ अपना फायदा देखे या सिर्फ अपनी भावनाओं में डूबा रहे।
हाँ, जब ये हद से बढ़ जाए तो ये समाज के आपसी भरोसे और जिम्मेदारी की जड़ों को ही खोखला कर देता है। कहीं हमारी आजादी ही हमें अकेला तो नहीं बना रही, ये सोचने वाली बात है।
बिल्कुल। और दूसरी बात
हमारी नैतिक भाषा का सिकुड़ना। हम शायद अच्छे काम करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, पर क्यों ये समझाने के लिए हमारे पास मुझे ऐसा लगा या मेरे लिए जरूरी था से आगे के शब्द कम हो रहे हैं।
कर्तव्य, सेवा, त्याग, वादा, सबकी भलाई, ये शब्द गायब हो रहे हैं बातचीत से।
हाँ, इससे साझा मूल्यों पर बात करना, असहमत होना, फिर भी साथ रहना, ये सब मुश्किल हो जाता है।
तीसरा, वो स्मृति के समुदायों का कमजोर होना, जब हम अपनी साझा कहानियां, अपना इतिहास, अपनी परंपराएं भूल जाते हैं
तो हम जड़ों से कट जाते हैं, अकेले महसूस करते हैं। भारत में भी हम ये देखते हैं ना, शहरों में अकेलापन, बदलते पारिवारिक ढांचे, कहीं ये इसी कड़ी का टूटना तो नहीं?
सोचने वाली बात है। चौथा क्या था?
चौथा, हर चीज को थेरेपी या व्यक्तिगत संतुष्टि के नजरिए से देखने का खतरा, जब रिश्ते, काम, धर्म सिर्फ इसलिए अहम रह जाएं कि वो हमें अच्छा महसूस कराते हैं या नहीं,
तो मुश्किल वक्त में टिकना मुश्किल हो जाता है।
बिल्कुल। जिंदगी सिर्फ खुशी पाने का प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें त्याग भी है, प्रतिबद्धता भी है।
और पांचवा,
हमें व्यक्तिवाद को संतुलित करने के लिए उन पुरानी नैतिक भाषाओं को फिर से खोजना होगा, जैसे धार्मिक आस्था या नागरिक कर्तव्य वाली भाषा, जो हमें खुद से बड़े किसी मकसद से जोड़ दी हैं। और आखिर में उन छोटी स्थानीय संस्थाओं को मजबूत करना होगा, जहां हम असल में एक दूसरे के साथ जीना सीखते हैं।
इस किताब में कई बातें ऐसी हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। जैसे एक जगह कहा है सार रूप में कि व्यक्तिवाद अमेरिकी संस्कृति की जान है, लेकिन ये कैंसर की तरह फैल सकता है और उसी आजादी को खत्म कर सकता है।
हाँ, मतलब जरूरत से ज्यादा व्यक्तिवाद उन्हीं सामाजिक रिश्तों को तोड़ देता है जो हमारी आजादी को मुमकिन बनाते हैं। संतुलन कितना जरूरी है।
और वो शीला लार्सन वाली बात, ये बस मेरी अपनी छोटी सी आवाज है, ये शीलावाद है।
हाँ, ये दिखाता है कि जब हर कोई सिर्फ अपनी आवाज सुनेगा तो साझा संगीत कैसे बनेगा, समाज कैसे चलेगा बिना किसी साझा नैतिक आधार के।
एक और गहरी बात मुझे लगी, हम खुद को दूसरों से आजाद होकर नहीं बल्कि उनके जरिए ही पाते हैं, हम अकेले अपनी गहराई तक नहीं पहुँचते।
ये उस आम सोच को चुनौती है कि हमारा असली मैं कहीं अंदर अकेले में छिपा है। नहीं, हमारी पहचान रिश्तों में बनती है, भूमिकाओं में, जिम्मेदारियों में।
और आखिर में वो स्मृति का समुदाय जो अपना अतीत नहीं भूलता, अपनी कहानी कहता रहता है।
हाँ, ये याद दिलाता है कि हमारी जड़ें, हमारी साझा विरासत कितनी जरूरी हैं। ये हमें पहचान और दिशा देती हैं, जो सिर्फ आज में जीने वाले व्यक्तिवाद से नहीं मिल सकती।
तो ये सब बड़ी गहरी और सोचने वाली बातें हैं, लेकिन अब सवाल उठता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कर सकते हैं, कैसे उतारे इन विचारों को, अपनी सोच और भाषा में इन शब्दों को वापस लाना, ये एक शुरुआत हो सकती है।
बिल्कुल। दूसरा, उन बीच की संस्थाओं में सच में शामिल हो, सिर्फ ऑनलाइन पैसा दान करने या पोस्ट लाइक करने से आगे बढ़कर।
अपने बच्चों के स्कूल की किसी समिति में, मोहल्ले की किसी समस्या को सुलझाने में।
हाँ, किसी धार्मिक या सामाजिक संस्था में अपना समय दें, अपनी ऊर्जा लगाएं, असली जुड़ाव वहीं बनता है।
तीसरा, अपने काम को सिर्फ नौकरी या करियर से ज्यादा समझना, क्या इसका कोई सामाजिक मतलब भी है, क्या इसे एक अभ्यास की तरह देख सकते हैं जिसे अच्छी तरह ईमानदारी से करना ही अपने आप में एक मूल्य है।
हाँ, ये सोच काम को ज्यादा सार्थक बना सकती है। चौथा, अपनी स्मृति के समुदायों को सींचना,
अपने परिवार की कहानियां सुनना सुनाना, स्थानीय त्योहारों परंपराओं में हिस्सा लेना।
जी हाँ, ये हमें हमारी जड़ों से और एक दूसरे से जोड़ता है।
और पांचवा,
रिश्तों को सिर्फ लेन देन या थेरेपी की तरह ना देखना, खासकर गहरे रिश्ते, शादी, पक्की दोस्ती, उन्हें एक वादे, एक प्रतिबद्धता की तरह देखना,
जिसमें मुश्किल वक्त में साथ निभाना, माफ करना, त्याग करना, ये सब शामिल हो।
हाँ, ये रिश्ते सिर्फ लेने के लिए नहीं, देने के लिए भी होते हैं।
इस पूरी चर्चा से मुझे जो सबसे अहम बात लगी वो है संतुलन की जरूरत, व्यक्ति की आजादी और समुदाय की जरूरत के बीच, अपने सपनों और दूसरों के प्रति जिम्मेदारी के बीच।
हाँ, और सच्ची आजादी शायद सिर्फ बंधनों का न होना नहीं है,
बल्कि सही चीजों से, सही लोगों से, सही मकसदों से जुड़ने की क्षमता है।
बहुत खूब कहा, और मेरे लिए वो भाषा की ताकत वाली बात बहुत मायने रखती है। जिस तरह के शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारी सोच को, हमारे समाज को आकार देते हैं।
अगर हम प्रतिबद्धता, समुदाय, साझा जिम्मेदारी की भाषा को फिर से जिंदा करें
तो शायद हम एक ज्यादा जुड़ा हुआ समाज बना सकते हैं। ये किताब हमें यही याद दिलाती है कि हम अपनी इच्छाओं और अपने जुड़ाव की जरूरत के बीच हमेशा एक संतुलन खोजते रहेंगे।
और श्रोताओं के लिए हम ये सवाल छोड़ जाते हैं, क्या आपको लगता है कि आपकी अपनी जिंदगी में या हमारे समाज में व्यक्तिवाद और समुदाय के बीच का ये संतुलन कहीं बिगड़ रहा है? हम अपने हृदय की आदतों को कैसे सुधार सकते हैं ताकि हम ज्यादा जुड़े हुए, जिम्मेदार और शायद ज्यादा सार्थक जीवन जी सकें?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।